इंशाल्लाह ताला आज हम सातवें पारे में आयत नंबर 83 से करेंगे। وَإِذَا سَمِعُوا और जब वो सुनते हैं मा जो उन्ज़िला इला रसूल नाजिल किया गया रसूल पर, क्या नाजिल किया गया रसूल पर, कुरान करीम वही इलाही अल्लाह का कलाम सुनते हैं, कौन सुनते हैं, इज़ा समीउ जब वो सुनते हैं, ये किसके बारे में आयात आई हैं। असल में हम इसको जोड़ेंगे पिछली आयत के साथ जिसमें अल्लाह ताला ने नसारा के बारे में फरमाया था कि वो मुसलमानों से बनिस्बत दूसरों के मुवद्दत रखते हैं, करीब है मुवद्दत में, और हमने ये पढ़ा कि उनके अंदर तकब्बुर नहीं है, और जब तकब्बुर नहीं होता ना तो फिर इंसान हक को पहचान जाए तो उसको मान जाता है, जब तकब्बुर होता है ना फिर इंसान कहता है मैं ना मानूं, मैंने नहीं मान के देना, चाहे समझ आ भी जाए मैंने मानना ही नहीं है, जैसे अबू जहल में तकब्बुर था, जैसे यहूद के अंदर तकब्बुर था। तो इनके अंदर जो किस्सीन है, जो इनके राहिब लोग हैं, दरवेश किस्म के लोग, उनकी और तकब्बुर भी नहीं ये रखते हैं, तो इस वजह से ये हक को मानने में पहल करते हैं। आज भी जो ऐसे लोग हैं वो वाकई इस्लाम को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं, जो अपने दीन के अंदर भी हक पे होते हैं, सब नहीं इससे मुराद। तो ऐसे ईसाई जिनमें वो खसूसियात हैं जो हमने आखिरी आयत में पढ़ी छठे पारे की, वो जो हैं उनकी बात हो रही है, और खास तौर पर यहाँ पे बात हो रही है नजाशी और उनके साथियों के बारे में। आपको पता है हजरत जाफर बिन अबी तालिब, वो जब हबशा उन्होंने हिजरत की थी मुसलमानों के ग्रुप के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अभी मक्का में ही थे, तो उस वक्त उन्होंने जब हिजरत की और वहाँ ये लोग पीछे ही पहुँच गए और इन्होंने जाके नजाशी को भड़काया मुसलमानों के खिलाफ, और उसने तलब कर लिया इनको अपने दरबार में, और उस वक्त हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की आयात तिलावत फरमाई थी जिसका असर नजाशी पे बहुत हुआ था, और उसने तिनका उठा के कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था आप इनसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछे ना, उनके बारे में ये क्या कहते, बाकी चीज़ों से तो मुतासिर हो गया नजाशी। तो इसी तरह फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की, तो हिजरत करने के बाद आप वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए, तब फिर नजाशी ने एक वफद भेजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और इस वफद के अंदर वो अपने इनके बड़े बड़े नसारा के उलमा और मशायख भी थे, और इस वफद में कुछ मुसलमान भी थे, और ये वफद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने कुरान पाक को सुना, तो ये लोग सुनते जाते थे और इनका क्या हाल हो रहा था, तौरा आयुना हम तफीदु मिनत दमी, तुम देखते हो उनकी आंखों को बह पड़ती हैं आंसुओं से, मिम्मा आरफु मिनल हक, इससे जो उन्होंने पहचान लिया हक में से, जो उन्होंने हक है उसको जब पहचान लिया तो उनकी आंखों से जारों कतार आंसू बहने लगे। तो आप देखें जब नजाशी ने भी सुना तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, और वो भी इतना मुतासिर हुआ था कुरान से। फिर जब इस ग्रोह ने, इस वफद ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान सुना, तो वो भी इस कदर मुतासिर हुए इस कुरान से, इस हक से, कि उनकी आंखें बह पड़ी। ये क्या जज्बा होता है, ये क्यों ऐसा होता है, उन पर इतना असर किया कुरान ने। ये कुरान पाक की तासीर है, ऐसे नहीं कि वो इसकी सिर्फ जैसे एक ट्यून या एक रिदम या इसको सुन के मुतासिर हुए और वो उनके दिल पे असर हुआ, जैसे बाज लोग आज भी कुरान पाक सुनते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती लेकिन उनके दिल पे असर हो रहा होता है। वो कहते हैं यानी बाज लोगों के साथ उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि उनको ना कुरान का पता है ना उनको अरबी का पता है, तो उनके सामने अरबी भी बोली गई और कुरान भी पढ़ा गया, तो उन्होंने कहा नहीं ये डिफरेंट चीज है, उनके दिल पे असर हुआ उसका, वो गैर मुस्लिम लोग थे। तो कुरान पाक का एक असर है, इसके अंदर एक सौती असर भी है, यानी आवाज जो इसकी जो जो इसका रिदम है ना वो भी असर करता है, लेकिन जो इसको समझ पाए तो वो तो उसके उसका दिल को ग्रिप कर लेता है ये कुरान। सुभान अल्लाह, इसके अंदर जाहिर है अल्लाह का कलाम है, इंसान का नहीं है। तो जो सुनता है अगर उसकी फितरत सलीम है, अगर उसके अंदर तकब्बुर नहीं है, तो हक को पहचान जाता है वो। तो इन लोगों के साथ भी कुछ यही मामला हुआ। और आप देखें आज भी, हाँ बहुत सारे, आप जब वीडियोस को कभी सर्च करें, बहुत सारे लोग जब वो इस्लाम लाते हैं, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो शेयर भी की थी रामा पीस में, कि एक आदमी जब वो मुसलमान हुआ, उसने कलमा शहादत पढ़ा, तो उसके बाद उसकी ये हालत थी, वो इस कदर फूट फूट के रोया, यानी उसको देख के इंसान को रोना आ जाए, और वो जो इर्द-गिर्द खड़े लोग हैं वो भी रोने लगे उसको देख के। ये क्या चीज होती है जब हक सामने आ जाता है, मिम्मा आरा फू मिनल हक, इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। ये जो हक होता है ना, ये इंसान जब इसको पहचान लेता है, वो कलमा पढ़ता है, तो वो उसको अपनी एक तो किस्मत पे रश आता है कि अल्लाह मैं तो दुनिया में पता नहीं कहाँ भटक रहा था, मैं किन वादियों में घूम रहा था, तूने अपनी नजरे करम मुझ पे कर दी, मेरी आंखें खोल दी, तूने ये हक मुझे पहुंचा दिया, वरना मैं तो जहन्नम की आग में गोते खा रहा होता। वो जो उनको एक तड़प होती है ना अंदर, जैसे एक प्यास है, वो भी बुझती है इस हक को पाके, उसकी वजह से भी आंसू निकलते, और आंसू इजहारे तशक्कुर के लिए भी निकलते हैं कि शुक्र है अल्लाह मैंने हक को पा लिया, शुक्र है अल्लाह ये हक मुझ तक पहुंच गया। तो ये एक अजीब ही कैफियत होती है उनको मिलती है, जो प्यासे थे और अब पानी उनको मिल गया, वो जो इजहारे तशक्कुर है, जो वो जज्बात अंदर से निकलते हैं, शायद हम समझ ही नहीं सकते। लेकिन आप ये भी देखें कि जब जो लोग कभी उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, सुना नहीं हुआ, मुसलमान है, नाम के मुसलमान है, लेकिन फितरत सलीम है, जब उन तक भी हक पहुंचता है ना, तब उनकी भी आंखें बह पड़ती। और अल्लाह ताला ने ये सूरह अनफाल में फरमाया है ना कि जो अहले ईमान है, तो ये कुरान ऐसी तासीर रखता है कि जब वो इसको पढ़ते हैं तो इसकी आयात उनके दिल पे ऐसा असर करते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। हाँ मगर जब इंसानों के दिल सख्त हो जाए या उनमें तकब्बुर भर जाए, तो फिर ये हाल ये होता है कि कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो, कुरान की मजलिस हो, और वो खराटे ले रहे होते हैं, या कुरान पढ़ा जा रहा होता है, कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया उनको कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने ऐसे ही है कि सुना या ना सुना बराबर, ऐसे भी होते। जब दिल साफ ना हो, दिल में सख्ती हो, तो फिर ये होता है। हम बाज दफा सारी जिंदगियां लहक लहक पे पढ़ते रहते हैं, मगर कभी ऐसी कैफियत क्यों नहीं आती? इसलिए है कि समझ में ही नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, समझ ही नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं। जब समझ आएगी तो फिर उस तरह से आंसू निकलेंगे, क्योंकि वो जो प्यासी जमीन को अब पानी मिल गया। सहाबाए कराम को देखें, कैसे वो कुरान पाक की आयात सुनते थे तो उनके दिल कैसे मोम हो जाते थे। हजरत उमर इसी वजह से तो मुसलमान हुए, कुरान सुन के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तकरीरें नहीं करते थे लोगों के आगे, उनको कुरान सुनाते थे, तबलीग के लिए कुरान सुनाते थे, और उन लोगों को समझ में आता था, इसलिए वो लोग मुतासिर होते थे। तो ये कुरान तासीर रखता है। आप देखें सहाबा की क्या हालत हो जाती थी, कि एक दफा ऐसे एक वाकया आता है कि हजरत उमर के सामने कुरान पाक पढ़ा जा रहा था, तो उनकी हालत क्या हुई कि ऐसे रोने लगे, उन्होंने कुरान की बाज आयात सुनी तो ऐसे रोने लगे कि बीमार पड़ गए, बिस्तर पे पड़ गए। जो ऐसी आयात इसमें आती हैं, जिन लोगों को समझ आती है उनको पता चलता है कि आयात क्या कह रही है, लोग आदत के लिए आ रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये इनकी हालत इस वजह से, इस खौफ की वजह से। तो कभी इंसान को खौफ आता है, कभी ये खुशी की नवीद सुनाता है, कभी ये तसल्लियां देता है, कभी ये मोटिवेट करता है कि दौड़ो नेकी की तरफ, कभी ये गुनाहों से बाज रखने के लिए ऐसी बातें करता है कि इंसान झंझोड़ दिया जाता है। अब देखें हजरत उज़ैल बिन अय्याज के पीछे अबू बकर बिन अय्याश ये नमाज पढ़ रहे थे मगरिब की। कहते हैं कि जब उज़ैल ने अल्हाकुमुत तकासुर को पढ़ा और लतारवुन्नल जहीन तक पहुंचे, तो इनके बेटे भी खड़े हुए थे नमाज में, वो बेहोश होकर गिर पड़े और हजरत उज़ैल को ये हिम्मत ना हुई कि वो आगे पढ़ सके। उनके लिए कुरान ऐसा असर करता था, क्यों भी होश होके गिर पड़े। इतनी तवज्जो से सुनना और उसको दिल पे लेना, ये इस तरह से वो लोग कुरान पाक सुना करते थे। अल्लाह अकबर। तो अगर हम भी ये चाहते हैं कि कुरान हमारे दिलों पर असर करे, तो दिलों की सख्ती से बचें, दिलों को नरम रखें, हक पहचान लें तो उसको फौरन मान जाए। और उन्होंने सिर्फ यहीं तक नहीं कि बस आंखों से आंसू बहाए और उसके बाद कपड़े झाड़े और उठ के चले गए, उनकी जुबानों ने भी गवाही दी। यकुलूना रब्बाना आमन्ना, वो कहने लगे हैं हमारे रब हम ईमान ले आए, फक्तुबना मा शाहिदीन, बस हमें लिख दे साथ उनके जो गवाही देने वाले हैं। वो कौन है जो गवाही देने वाले हैं? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की गवाही देने वाले, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का पैगाम लेकर आए उसकी गवाही देने वाले। अल्लाह हमें भी उनमें लिख दे। अव्वलीन तो सहाबा कराम ही थे और उसके बाद जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह यानी हमें मुसलमानों में लिख दे, हमें शहादत देने वालों में से लिख दे। हम शहादत ही देते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की, अल्लाह के एक होने की, इस कुरान के हक होने की, और जो तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई है इसकी गवाही देते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है। तो उन्होंने कहा ए अल्लाह हम ईमान ले आए हैं, हमें तू लिख दे शहादत देने वालों में जिन्होंने तेरे दीन की शहादत दी है, यानी वो मुसलमान हो गए। शहादत हक भी एक बड़ा मर्तबा है, इसलिए कि बाज लोग पहचान भी लेते हैं लेकिन इतने ढीठ होते हैं कि मान के नहीं देते। आपका क्या ख्याल है, अबू जहल पहचाना नहीं था? अबू तालिब पहचाने नहीं थे? पहचान गए थे लेकिन मान के नहीं दिए। यहूदी पहचाने नहीं थे क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? पहचाने थे, मानते नहीं थे, लेकिन इन लोगों के अंदर तासुब नहीं था। तो देखिए पहचाना, आंखों में आंसू आए, वो फौरन कलमा हक बोल दिया, फौरन दुआ करने लगे अल्लाह से। और वाकई जब इंसान का दिल नरम हो ना, जब आंखों में आंसू आए फौरन दुआ कर लिया करें, क्योंकि वो दुआ जो होती है ना वो दिल से निकलती है, और जो दिल से निकली हुई दुआ होती है वो अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। आगे पीछे शायद हम जो दुआएं करते हो, रस्मी करते हो, या ऐसे ही बस बोल दिया अल्लाह नेक बना दे, अल्लाह लायक बना दे, अल्लाह जहन्नुम से बचा दे, कोई अंदर दिल ही नहीं है, कोई पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन जिस वक्त इंसान का दिल नरम होता है, आंखों से आंसू जारी होते हैं, उस वक्त दुआएं किया कर। तो उन्होंने सुभान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना था? सूरह यासीन सुनी थी। तो उनकी देखो उनके ऊपर कैसे रिक्कत आ रही हो गई, उनके जो जज्बात हैं अल्लाह को इतने पसंद आए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की जीनत बना दी है। रहती दुनिया तक लोग पढ़ते रहेंगे, और इसी तरह जो भी बाद में आने वाले भी, जो भी सुनेगा इस कुरान को और उसका यही हाल होगा, अल्लाह ताला उसको क्या इनाम देगा, वो आगे आगे आएगा कि अल्लाह ताला कितना उनसे राजी हो जाता है। जो तासुब को छोड़ देते हैं, जो ही बात समझ आती है फौरन मान जाते हैं, जो ही समझ आ गई फौरन इकरार कर लिया, ढीठ नहीं बने, हठधर्मी नहीं दिखाई। ये नहीं कहा अभी हम घर जाके सोचेंगे, अभी हम पता नहीं क्या बनता है देखते हैं ना, अभी सोचते हैं देखें मशवरा करते हैं, अभी हम तो इस तरह से करते हैं ना, नहीं। बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं, एक हिंदू औरत मिली थी तो उसने कहा कि मुझे पता है कि ये हक है, मैं मानती हूँ, मेरा दिल कहता है, लेकिन मैं इस्लाम नहीं ला सकती, इसलिए कि मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। बहुत पुरानी बात है, उस वक्त ये दिल में आता है कि देखो, ये आज ना हम सोचे खुद अपने ऊपर रख के, हम तो मुसलमान घरानों में रहते हुए अपने रिश्तेदारों से इस कदर डरते हैं कि हम हक मान के भी और उसका इजहार नहीं करते, मुंह से बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, क्योंकि हम डरते हैं ये लोग हमसे क्या रवैया रखेंगे, फिर ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर हमें ये बातें सुनाएंगे। उन्होंने तो ऐसी कोई परवाह नहीं की, इसीलिए तो अल्लाह को वो प्यारे लगे ना, अल्लाह ने उनका जिक्र कर दिया। तो जब हक सामने आ जाया करे तो फिर देर ना किया करें। वो कहते हैं वो माला ना लानू मिनु बिल्लाही वो मा जा आना मिना हक, हमें क्या है कि हम ना माने अल्लाह को और ना माने जो हक हमारे पास आ गया, हमें ऐसा क्या है, यानी हम क्यों ना ही मान ले, हमारे पास क्या एक्सक्यूज है अब, क्यों हम डिले करें, ठीक है, हम क्यों ना माने, यानी वो अब आगे कह रहे हैं, हम तो सोचते ही रहते हैं ना हम क्यों मान जाएं, हमारे पास तो ये प्रॉब्लम, उन्होंने तो नहीं सोचा हम वापस जाएंगे तो कितनी हमारे घर वालों में एक्सेप्टेबिलिटी होगी, हमारी हमारे माशरे में कितनी होगी, हमें लोग क्या कहेंगे कि तुम गए थे तो फिर तुम आए, गए ईसाई थे और वापस हो आए तो मुसलमान हो के आ गए, ये तुमने क्या किया, अपना दीन मजहब ही छोड़ दिया। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। सुभान अल्लाह, हक देखा और मान लिया। और हम उम्मीद रखते हैं, नून शुरू में आ गया ना तो हम तमा रखते हैं, तमा क्या होती, लालच रखना ना, यानी किसी चीज की ख्वाहिश करना बहुत ज्यादा। हम उम्मीद रखते हैं कि युदखिलना, दाखिल करेगा हमको रब्बुना हमारा रब, मासात अलकौम सालेहीन, साले लोगों के साथ हमें दाखिल कर दे, हम ये उम्मीद रखते हैं, हम यानी अब हम ईमान ले आए हैं, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें साले लोगों के साथ अता फरमा दे। साले लोगों का साथ तो बड़े बड़े अंबिया ने मांगा, कि जो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतनी बड़ी बादशाहत भी मिल गई है तो तब भी दुआ क्या कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, कि उनकी दुआ है वाले हिकनी भी सालेहीन, दुआ का आखिर है कि अल्लाह सालेहीन के साथ मिलाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो आखिरी वक्त है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही दुआ है कि सालेहीन का साथ देना। रफीकुल आला जो है, बात कहते हैं कि सालेहीन का साथ है, तो सालेहीन का साथ इतना प्यारा साथ है कि दुनिया में भी ये साथ मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें सालेहीन की सोहबत अता फरमा, और आखरत में भी मांगना चाहिए कि ए अल्लाह सालेहीन के साथ हमें उठाना, वहां पे भी सालेहीन के साथ उठाना, क्योंकि सालेहीन का अंजाम अच्छा होगा, सालेहीन अच्छी जगहों पे होंगे, और वहां पे भी जिसको दुनिया में उनसे मोहब्बत है उसका दिल करेगा मैं वहां पे भी अबदी जिंदगी में उनके साथ ही रहूं। तो वो ये मांग रहे हैं, तो सालेहीन के साथ का क्या फायदा होता है दुनिया में, इंसान हदीस में क्या आता है, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, और इंसान वही करता है अक्सर जो उसका दोस्त कर रहा होता है, वरना दोस्त ही नहीं रहते। तो जब सालेहीन की कंपनी होगी तो जाहिर है आपको मोटिवेशन मिलेगी नेकी पे, बुराई से बचने के लिए आपको एक हौसला मिलेगा। और सालेहीन कौन है, सालेहीन के बारे में आता है कि वो अल्लाह वाले, जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए, या जिनके साथ बैठ के आपके इल्म में इजाफा हो। याद रखिए, बुरी मजलिस से अकेले रहना बेहतर है और अकेले रहने से अच्छी मजलिस बेहतर है। तो सालेहीन का साथ वो माहौल है असल में जो आप मांग रहे हैं, कि जिससे भी अल्लाह ताला के और करीब हो जाऊं। असल मकसद क्या है कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए ना, और उसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सी होगी, उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, सालेहीन के साथ से, ठीक है। तो इसलिए दुनिया में भी चाहा करें, दुआएं किया करें, अल्लाह यहाँ पे भी सालेहीन का साथ देना और आखिरत में भी सालेहीन के साथ ही रखना। और वो लोग जो यहाँ सालेहीन का साथ नहीं चाहते, उनसे एलर्जी महसूस करते हैं, उनको वो अच्छे लगते हैं जो अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको किसी चीज की परवाह नहीं, जो अपनी मनमानियां करते हैं, जो वैसे चलते हैं जिधर को दुनिया चल रही है, जिनको उन लोगों का यहाँ पे साथ पसंद है, तो फिर जिनके साथ यहाँ होंगे उनके साथ ही वहां होंगे, जिसके साथ मोहब्बत होगी उसी के साथ रहेंगे वहां पे। हदीस से भी यही पता चलता है, इंसान जिसके साथ मोहब्बत करता होगा उसी का साथ उसको मिलेगा वहां, तो सालिहीन से जो मोहब्बत करने वाले हैं उनको उनका साथ मिलेगा, और जो ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं जो बिल्कुल उलट चलने वाले हैं, तो फिर सोचें कि उनका अंजाम क्या होगा। तो ये हमारी दुनिया और आखिरत की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को। अच्छा, अब उन्होंने कितनी प्यारी दुआ की कि अल्लाह हमें अब ईमान तो ले आए हैं, अब हमें ऐसी कंपनी भी मिल जाए, अल्लाह ऐसा माहौल भी दे देना, क्योंकि इंसान को फौरन फिक्र होती है ना, अरे मैं इस रास्ते से कहीं हट ना जाऊं, अरे इस रास्ते की परेशानियों से मैं कहीं मेरे कदम लटखना ना जाए। जब इंसान नया ना दीन पे आता है ना, तो उसको बहुत जरूरी है कि वो सालिहीन का साथ मांगे ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, तो सालिहीन का वो साथ मांगते हैं, अल्लाह ताला ने उनका क्या फिर बताया, फअसाबहुमुल्लाह, तो बदला दे दिया उनको अल्लाह ने। अब माजी है ये, लेकिन मुस्तकबिल के लिए अभी तो नहीं ना बदला मिला, क्योंकि आगे है बीमा कालू जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अनहारु खालिदीन फीहा, जन्नतों का बदला तो अभी नहीं मिला। गो ईमान के अपने समरात दुनिया में भी मिलते हैं, लेकिन जन्नत अभी नहीं मिली, फिर क्यों कहा गया, माजी क्यों इस्तेमाल हुआ? जब कोई चीज कंफर्म होती है ना, तो फिर उसके लिए माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाता है कि ये ऐसे ही है जैसे कि बात हो चुकी, अल्लाह दे चुका, अल्लाह ने दे दिया उनको। बीमा कालू, बवजह उसके कि उन्होंने कहा, उनकी कॉल की वजह से ही दे दिया, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। क्या सिर्फ कॉल पे जन्नत मिल सकती है? देखें, बात यह है कि उनका सिर्फ कॉल नहीं था, ये उनकी डिटर्मिनेशन थी कि अब हमने इस रास्ते पर ही चलना है। और फिर दूसरी बात ये कि आपने वो हदीस सुनी होगी, बहुत दफा मैंने सुना ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज दफा इंसान अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकालता है, अल्लाह ताला को इतनी वो पसंद आती है कि उसके बदले में अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देता है। बताई नहीं ना आपको बात, तो बीमा कालू, अल्लाह को उनकी ये बात इतनी जो दिल से निकली हुई उनकी तमन्ना थी, और उनके दिल से निकला हुआ इकरार था ना कि आमन्ना, हम ईमान ले आए, तो बेइख्तियार पुकार उठे ये कुरान सुन के। अल्लाह कुरान का ऐसा असर हमारे दिलों पर भी अता फरमा कि हमारे दिल कुरान के असर से, और इसकी जो तासीर है, इसकी जो इसका जो पैगाम है, अल्लाह ताला हमारे दिल भी इससे नरम हो जाए, अल्लाह हम भी इस तरह अमल के लिए ताजा दम अपने आप को महसूस करें, और हमारे अंदर भी जोश आ जाए इस कुरान को सुनने के बाद कि हम दौड़ने लगे तेरे रास्ते पे। तो उन्होंने जो कहा उसकी वजह से अल्लाह ताला उनको जन्नत इंतजरी मिन तहतिहा अनहारु खालिदीन फीहा, वो बागात अल्लाह ने दे दिए उनको जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा रहने वाली हैं उसमें। याद रखें कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को जो एजाज मिलेंगे, ऑनर्स मिलेंगे, पांच है वो ऑनर। वो पांच ऑनर क्या है? एक यही है, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले उसमें, अब किसी ने नहीं निकालना। एक और ऑनर क्या है कि कभी अब कोई बीमारी नहीं आनी, हमेशा सेहतमंद रहेंगे। और ये उनसे जाके पूछें जो बीमार होते हैं, ये बीमारी क्या चीज होती है, इंसान को लगता है कि सारी दुनिया की नियमतें एक तरफ है और सेहत एक तरफ है, उनको तो लगता है कि सबसे बड़ी नियमत ये सेहत मिल गई ना, तो सब कुछ ही मिल गया। ठीक है, अच्छा और क्या इजहार है? ये दो एजाज होगा। तीसरा ऑनर क्या मिलेगा? नहीं, तीन होगा ना। तीसरा ऑनर क्या मिलेगा? कि कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे, और उनके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह चमकते होंगे। अल्लाह, ये एक एजाज है। फिर ये आखिरी बात कि मौत कभी नहीं आएगी। और अब ये मुझे गड़बड़ हो गई कि कितने हुए, मैंने आपको कितने बताए, मगर एक और एजाज जो आखिरी है वो ये कि अल्लाह की रजा, कि अल्लाह ताला कभी नाराज नहीं होगा। अब इनको गिनने कितने हो गए, और फिर आप नंबरिंग करके लिखें कि इतने एजाज मिलेंगे उसको जब वो जन्नत में दाखिल होगा। तो बार बार कुरान पाक में आता है खालिदीन फिया खालिदीन, क्योंकि जब भी कोई बहुत पसंदीदा चीज हमें मिल जाती है ना, एकदम साथ ही क्या धड़का लग जाता है, क्या आए कहीं मुझसे छीन ना जाए, आए कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, आए कोई ले ना ले मुझसे। तो जब जन्नत में इंसान जाएगा तो उसको ये खुशखबरी दे दी जाएगी, हमेशा रहने वाले हैं, अब नहीं कोई निकालेगा, फिक्र ना करो। दुनिया में भी नियमतों के जवाल से हम डरते हैं ना, कोई प्यारा है तो उसकी जुदाई से डरते हैं, कोई नेमत है तो उसके छिन जाने से डरते हैं, तो वो नहीं छीनेंगी कभी। और जज़ाउल, और ये बदला है मोहसिनीन का, नेकोकारों का। पहले भी आपको मोहसिनीन का बताया, वो लोग जो ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर ऐसे दर्जे पे नहीं जा सकते तो कम से कम उनको ये जरूर याद रहता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। असल में इनको मोहसिन क्यों कहा गया, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शरीयत पर भी अमल किया और फिर इस्लाम को भी देखा तो पहचान के उस पे भी ईमान लिया। और मोहसिन कौन होता है, जिसके कामों में हुसन होता है, वो चलावा काम नहीं करता, बस चल चलाओ का काम, अच्छा बस मारे बांधे का कर लिया, मारे बांधे की नमाजें, मारे बांधे के रोजे, बस क्लासें भी ले रहे हैं लेकिन जैसे तैसे ही करके ले ली, आधी गाड़ी में सुनी, आधी किचन में काम करते हुए सुनी, आधी लेटे हुए सुनी, आधी कुछ और करते हुए सुनी। तो ये एहसान का लेवल थोड़ी है। हर अपनी नेकी में कोशिश करें, ये एक दिन में नहीं होगा, हर नेकी में कोशिश करें कि एक लेवल ऊपर जाए। एक्सीलेंस का लेवल ऐसे नहीं मिल जाता, मोहसिनीन वो जो है एक्सीलेंस के लेवल पे काम करने वाले, स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे हम अपनी नमाजों को थोड़ा बेहतर करें, फिर थोड़ा बेहतर करें, फिर तो इस तरह लेवल्स हैं, तो आप इंशाल्लाह फिर एक्सीलेंस पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर परवाह ही नहीं है किसी एक्सीलेंस पे करने की, बस जो चल रहा है ना, जो 10 साल पहले मैं नमाज पढ़ी थी वही आज है, जो 10 साल पहले मैं रोजा रख रही थी वही आ गया, जो मेरे इल्म का लेवल ही हो, जो मेरे खुशू का लेवल, जो मेरे खुदा खौफी का लेवल, जो पहले था जो बचपन में था वही आज भी चल रहा है। और कोई अपने अंदर दिल में ये तमन्ना नहीं है कि मैं अपने आप को बेहतर करूं, इससे मैंने आगे बढ़ना है, ये स्टेज तो मेरा पिछले साल भी था, इससे आगे मैंने क्या अचीव किया। ये है फिर कि इंसान के अंदर ये जब तलब होती है ना, फिर वो एक दिन आगे बढ़ते बढ़ते एक्सेलेंस पे पहुंच जाता है। जैसे आपने जब खाना पकाना सीखा होगा, रोटी बनानी सीखी होगी, तो उस वक्त क्या कैसी बनती होगी, कोई कोना इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, खाना कोई आधा कच्चा आधा पक्का, जैसा तैसा भी बन गया, कभी जल गया कभी कुछ हो गया। लेकिन फिर आहिस्ता 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 बेहतर करते गए करते गए, और आपको दिल भी था कि मैं बेहतर करूं, इससे ज्यादा अच्छा करूं, तो फिर आपने प्रैक्टिस कर करके उसके अंदर बेहतरी लेकर आए, और एक दिन आप माहिर हो जाते हैं। तो इसी तरह नेकियों में भी, नेकियों पे वही नहीं खड़े रहना जहां पे बहुत पहले थे, जहां से स्टार्ट किया था, नेकियों में भी उसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करना है, क्या उसमें हुसन पैदा करना है। अब हम कहते हैं हमने सारा कुछ ही कर लिया, नमाज भी हम पढ़ते हैं, कुरान भी हम पढ़ते हैं, फलां चीज भी हम करते हैं, वो हमने उंगलियों पे ना गिनी हुई है, तो हाँ हमारे पास एक लिस्ट है, बस हम उसको देख देख के खुश होते हैं, मैं तो सारा कुछ ही करती हूँ, देखो मैं ये भी ये भी ये भी नहीं। देखें आप अगर नमाज पढ़ती है ना, तो देर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें बेहतरी के और ऑलवेज एक और लेवल होगा जिसको आपको अटेन करना चाहिए, एक अगला दर्जा होगा जिस पे आप आज हैं उससे बेहतर होगा। देखिए एक बच्चा नमाज पढ़ता है और एक बड़ा नमाज पढ़े, कोई फर्क ही नहीं। अच्छा फिर बड़े ने भी नमाज पढ़ ली, लेकिन एक वो जो नमाज सहाबा कराम की होती थी, एक वो नमाज जो नेक लोगों की होती थी, जो हमारे असलाफ की होती थी, जो अम्बिया की होती थी, उनकी नमाजों का भी तो हम पढ़ते हैं ना कैसी होती है। लेकिन अगर ये सिर्फ नमाज में नहीं, हर नेकी के काम में, तो इसमें दर्जे होते हैं, नेकियों में भी दर्जे। अब आप नेकी में एंटर तो हो गए, उस दिन आपको आपको कॉलेज में एडमिशन लेना था, आपको एडमिशन ले मिल गया, बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज। अब उसके बाद ये थोड़ी ही कि बस एडमिशन ले लिया तो बस, अब आप ये ही कहती जाए मैं जाना था तो वहां पे दाखिला हो गया, मैं तो वहां की स्टूडेंट। नहीं, फिर आगे पढ़ाई में भी आप आगे से आगे बढ़ेंगे ना, एक ग्रेड से अगला, अगले से अगला, अगले से अगला। तो हम जिस लेवल पे है ना, हम सारी जिंदगियां भी चलते रहें और इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते रहें, तब भी गुंजाइश होगी मजीद कि हम इम्प्रूव करें। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बस हमने आज 100 आउट ऑफ 100 पे पहुंच गए, अब इसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं। कभी कैरेक्टर में जरूरत होगी, कभी इबादत में भी जरूरत होगी, कभी आपके और मामलात में जरूरत होगी, हर चीज में जरूरत है। तो उंगलियों पे ये गिन के लिस्टें बना के सिर्फ खुश ना हो जाया करें। अब इन कामों को आप देखें, मैं इनमें किस लेवल पे हूं, क्या मैं एक्सीलेंस पे पहुंच गई हूं, नहीं पहुंची। आप अगर कोई देखें, अगर कोई 50 नंबर ले रहा है तो ठीक है, वो उससे तो बेहतर है जो 30 ले रहा है, लेकिन अभी उसको और 50 तक के उसके पास भी तो दर्जे हैं जहां उसने पहुंचना है। हम हमेशा देखते रहते हैं, नहीं मैं उससे तो अच्छी हूँ, मैं उससे तो अच्छी हूँ, लेकिन आप एक्सीलेंस पे तो नहीं है ना अभी भी। इसी तरह जो 60 पे है वो उससे तो बेहतर है जो 50 पे है, लेकिन वो भी अभी पीछे है, उसको भी अभी आगे बढ़ना है। जो 70 पे है, अच्छा है, वो अच्छे नंबर है उसके, नंबर से मतलब ये है कि नेकियों में, मैं आपको जस्ट लेवल्स बता रही हूँ। जो 70 पे है वो 60, 50, 40 वाले से बेहतर है, लेकिन उसके पास भी अभी गुंजाइश है कि वो और अपने आप को बेहतर करे। तो कभी मुतमईन ना हो के बैठ जाए करें, हमेशा गुंजाइश है कि मैं इसमें बेहतर करूं। आपकी पढ़ाई में गुंजाइश है कि आप बेहतर करें, बस सिर्फ एक क्लास ले लेना काफी नहीं है, मैंने सुन तो लिया ना, नहीं इसमें कैसे और इम्प्रूव करूं, कैसे बेहतर बनाऊं, मैंने मोहसिन बनना है। क्योंकि आगे आएगा, आज का सबक इसी पे खत्म होना है कि अल्लाह को मोहब्बत है मोहसिन से। तड़प ना जाए हमें, हम ये सोच के कि अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है, हाय मैं अभी तक उनमें शामिल नहीं हुई, मुझे भी उनमें शामिल होना है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो शामिल हो ना उनमें, कोशिश करें ना इसकी। हम हमेशा पूछते हैं पता नहीं अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है कि नहीं है, कैसे मुझे पता चले। तो कैसे पता चले, आप वो देख लें कुरान पाक में कहाँ कहाँ अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह को इनसे मोहब्बत है, इनसे मोहब्बत है, इनसे मोहब्बत है, बन जाए वो, कोशिश करें वैसे बनने की। ठीक है, वल्लदीना कफरू वकज्जबू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इनकार कर दिया। अब वो ऐसे भी थे जैसे यहूदी जो ढीठ ही बने रहे, हक तो उनके सामने भी आया, बस नहीं मानना, नहीं मानना, मैं ना मानू। अब वो जो ढीठ किस्म के लोग होते हैं ना, जिनको आप जितना मर्जी उनके साथ सर खपा लें, उन्होंने बस कहना होता है हमने नहीं मानना। ये नहीं कि उनको हक नहीं समझ आया, बस मान के नहीं देना। वो कंजा वो भी आए आते हैं, और इससे भी बढ़ के ये कि और झुटलाया आयतों को अल्लाह की। देखिए अल्लाह को तो सारे ही मानते, मैं बताऊं आपको कि कोई दीन वाला मजहब वाला भी आप उठा के देख ले, वो ये कहेगा कि हाँ एक खुदा तो है। मसला तभी आता है जब उसकी आयात सामने आती है कि आयतों को मानते हो, जो उसने फरमाया उसको मानते हो, वहां पे नहीं। कद्दा वो भी आया था, वो झुठलाते हैं आयात को। उलाई का अस्हाबुल जहीन, ये हैं जहन्नुम के साथी, और ये सबसे बड़ा खसारा है। पता है कि जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डरना चाहिए वो क्या है? हम किन चीजों से डरते हैं? हम डरते हैं जॉब ना चली जाए, बीमार ना हो जाऊं, फकरो फाका ना आ जाए, आई किस्मत खराब ना हो जाए, किस्मत ना फूट जाए, ये नुकसान ना हो जाए, वहां नुकसान ना हो जाए, ऐसे इन चीजों से डरते हैं ना, कोई तबाही ना आ जाए मेरे घर पे, कुछ ऐसी बस चीजों से डरते रहते हैं। हालांकि जो सबसे ज्यादा डरने वाली चीज है, सबसे ज्यादा खौफ खाने वाली चीज है, वो ये है कि अल्लाह ताला मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए, तो मुझे मुझसे नाराज हो के कहीं वो मुझे जहन्नुम में ना डाल दे। ये है सबसे बड़ी खौफ करने वाली चीज। और सबसे बड़ी खौफ करने वाली चीज ये है कि मैं इससे डरूं कि अल्लाह ताला के दीदार से कहीं मैं महरूम ना हो जाऊं। जिस दिन बहुत सारे लोगों को अल्लाह का दीदार हो रहा, उस दिन कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह मुझसे हिजाब कर ले। ये ये चीजें हैं डरने की, ये चीज है डरने की कि अल्लाह से कहीं मैं दूर ना हो जाए, वो मुझे अपने से दूर ना कर दे मेरे किसी गुनाह की वजह से, ये है डरने की चीज है। और हमने खौफ किन चीजों के बनाए, तो इस चीज से खौफ करना चाहिए कि अल्लाह हम कहीं जहन्नम के साथी ना बन जाए। तो वो लोग जो उन्होंने कुफर किया, जिन्होंने तकजीब की अल्लाह की आयात की, वो अल्लाह की नाराजगी की में आ गए और जहन्नम के साथी बन गए इवेंचुअली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए। अब यहां तक ना, ये जो 86 आयत है, यहां तक लिख लीजिए कि यहां तक जितने भी अहकामात आपको बताए जाने थे वो बताए जा चुके। अब जो सूरह मायदा में आने थे ना, जितने भी बातें अहकाम शरीयत, वो सब आ चुके हैं। अब क्या है, अब जैसे एंड में जाके एक तरह से ताकीद की जाती है ना, आप किसी से बात करते रहे फिर जब बिल्कुल उसको दरवाजे पे छोड़ दे जाते हैं तो आप कहते हैं भूल ना जाना, फिर ये बातें फिर दोहरा देते हैं। अब बच्चों को काम कहते हैं जाते हैं, अगर फिर से कह देते हैं देखा याद रखना ये फिर चीज। तो अब ये आयत का इख्तिताम आ रहा है यहां से, अब आगे जितनी भी आयात आएंगी वो असल में समझ लें कि खुलासा ही है पिछली जो बातें थी उन्हीं का, या कुछ डिटेल पिछली बातों की जो थी वो इसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं अब आएगी। हम पहले पढ़ चुके हैं अहकामाते हलाल व हराम। अब हलाल और हराम के जुमरे में जब बात आती है और इंसान नेक बनना चाहता है, मुसलमान में से होना चाहता है, वो चाहता है कि बस अल्लाह का कुर्ब मुझे मिल जाए, तो बाज औकात उसके लिए वो कुछ ऐसे भी काम करने लगता है जो सही नहीं है। और वो उनमें क्या है, मिसाल के तौर पे वो चीजें अल्लाह ताला ने जिनको हलाल किया उनको भी अपने ऊपर हराम कर लेता है। जैसे वो सोचता है मैं पता नहीं जोगी बन के जिंदगी गुजारू, जैसे पिछली कौमों में भी ऐसा हुआ था, हर मजहब में तकरीबन ऐसी चीजें रही हैं कि उनमें भी ईसाइयों में मसलन रहबानियत नहीं थी उनके मजहब में, ऐसे नहीं था कि उनके मजहब कहता है उनको कि दुनिया छोड़ के बस ये नंस बन जाओ और ये जो पादरी इनके हैं ये इस तरह से बन जाओ और बस, वो उसे कोई और कलर नहीं पहनते, सिर्फ काला और सफेद पहनती है ना, सारी जिंदगी उन्होंने शादी नहीं करनी, घरों को छोड़ के वो चर्चेज में रहते हैं बस वहीं पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं और वहीं पे इबादत। और ये उनको मजहब ने नहीं कहा था, इन्होंने खुद अपने ऊपर कर ली कि हम नेक बनना चाहते हैं। इसी तरह हिंदुओं के अंदर भी है, बिल्कुल वो योगी टाइप होके फिर रहे होते हैं और बस फिर उसके बाद कुछ नहीं, वो ना शादियां ना कुछ ना घरों में रहते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं। इसी तरह और भी मजाहिब, इस्लाम का ये तरीका नहीं है, इस्लाम का बहुत बैलेंस दीन है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस हवाले से हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तुहर्रिमू तय्यिबात, ना तुम हराम करो पाकीजा चीजों को, मा हल्लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिए, वला तातदू, और तुम ज्यादती ना करो। ज्यादती क्या है इसके अंदर, हद से बढ़ जाना क्या है इसके अंदर, कि हलाल को हराम कर देना। देखें, हलाल को हराम करना या हराम को हलाल करना, ये इंसान यानी समझता है ना कि हराम को हलाल अगर कर दिया तो ये बुरा है, हलाल को हराम कर दिया तो भी उतना ही बुरा। ये हमारी यानी अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार भी नहीं दिया कि हम किस चीज को पकड़ के सोचे, अच्छा मैं समझती हूँ कि ये हलाल होनी चाहिए ये हराम होनी चाहिए, और इसके इतने बेनिफिट्स हैं ये तो हलाल हो, ये इसके इतने नुकसान है ये तो हराम होनी चाहिए, ये मेरे और आपके करने से नहीं है, या ये मुझे चीज बड़ी बुरी लगती है इसको तो हराम ही होना चाहिए। ये अथॉरिटी अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है, उसको सिर्फ इख्तियार है कि वो किस चीज को बताए ये हलाल है और ये हराम है। तो सबसे पहले तो ये हम खुद अपनी अकल समझ अपनी पसंद या नापसंद से चीजों को हलाल और हराम नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम को सूरह तहरीम में क्या बताया गया, जरा सी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अब मैं कभी शहद नहीं खाऊंगा, अल्लाह ताला ने फौरन आया तो आप क्यों हराम करते हैं उस चीज को जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की। तो एक तो होता है ना, एक हराम करना ऐसे होता है कि मैंने कभी नहीं खाना क्योंकि कोई बीमारी है, मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया, वो एक अलग बात है, वो नहीं यहाँ पे कही जा रही। डॉक्टर कई रेड मीट से मना कर देते हैं, कोई और चीजों से, कि आपके लिए भाई जहर है अगर आपने खाई तो, आप शुगर हो गई, किसी को इतनी हाई लेवल शुगर है कि उसको मना कर दिया से मीठे से, तो अब वो इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे वो है कि जब इंसान अपने आप को नेक बनाने के लिए या नेक साबित करने के लिए कहे कि मैंने ये चीज नहीं खानी क्योंकि बस मैं नेक बनना चाहती हूँ। इसकी एग्जाम्पल एक आपको इब्ने अभी हातिम में है ये एग्जाम्पल, तो उससे आपको बात और समझ आएगी कि बाज़ सहाबा ने आपस में कहा कि हम अब खसी हो जाएंगे, यानी हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे कि जैसे ना मर्द हो जाएंगे, इसी तरह हम दुनिया की लज्जतों को भी छोड़ देंगे और हम बस्तियां छोड़ के जंगलों में जाके लोगों से दूर इस तरह अल्लाह की याद में बस जिंदगी करेंगे। लगता तो ये बड़ा आइडियल है। देखिए ना, आप देखें, जब आप हज और उमरे के लिए चले, हज पे तो फिर भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन आप वैसे हरम वगैरह जाते हैं, उमरे वगैरह के लिए जाते हैं, बस आपने अपनी अल्लाह अल्लाह की, आप होटल में आए सोए, फिर आप गए, फिर आपने अल्लाह अल्लाह की, फिर वापस आए, ना अगर आपने किसी से बात करनी, ना कुछ किसी से कोई मामला करना, ना बड़ा आसान लगता है और बड़ा मजा भी आता है ना। लेकिन जब दुनिया के अंदर आके अपने घरों में वापस आते हैं तो चैलेंजेस तो यहाँ है, वो तो आसान है, ये है असल चैलेंज। जब उसने कुछ कह दिया, उसने झगड़ा खड़ा कर दिया, किसी ने हक मार लिया, किसी ने जुल्म कर दिया, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, कोई ये मसला कोई वो मसला, तब आप क्या करते हैं? ये है असल इम्तिहान। ये तो आसान है दुनिया छोड़ के एक तरफ होके अल्लाह अल्लाह बस करते रहो। तो नबी अलैहिस्सलाम को जब ये बातें पता चली तो आपने उनको बुलवाया, उनसे पूछा आपने ऐसा कहा है? उन्होंने कहा हाँ। फिर आपने फरमाया तुम देख नहीं रहे, मैं नफली रोजे भी रखता हूँ, नहीं भी रखता, रात को नफली नमाज पढ़ता भी हूँ और सोता भी हूँ कुछ कुछ टाइम रात का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते भी थे। जबकि आप देखिए बाज दफा हम कहानियां पढ़ते हैं और झूठी सच्ची कहानियां बनाई हुई है, वो फलां जो थे बुजुर्ग उन्होंने 40 साल तक ईशा की नमाज के वजू के साथ फजर पढ़े, यानी वो सोए ही नहीं पूरी पूरी रात। जबकि जहां पे खास हमें मिलता है, स्पेशल एक ताकीद मिलती है जब आपने सहाबा को इससे रोक दिया और फरमाया मैं रात को सोता भी हूँ। जाहिर है जो बंदा सोएगा उसका वजू तो खत्म हो गया ना। तो जी वो कितने नेक थे। अब आपको कहा जाता है आप भी ऐसे नेक बने, देखो हम तो ऐसे नेक नहीं, इस्लाम तो ये नहीं कहता, इस्लाम बिल्कुल नेचुरल दीन है। और आपने फरमाया मैंने निकाह भी रखे कर रखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां भी की और यही आपका तरीका है। सुनो जो मेरे तरीके पर हो वो तो मेरा है और जो मेरी सुन्नतों को ना ले वो मेरा नहीं। कि कोई बंदा कह दे मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा इसलिए कि मैंने तो बस ऐसे ही रहना है क्योंकि शादी होगी, गहरा बच्चे होंगे, बीवी होगी, घर के खर्चे होंगे, फिर उनके मसले होंगे, तो ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे मेरी इबादत से, तो मैं इसलिए शादी नहीं करता थी। ये नहीं आपकी सुन्नत है, समझाइए कि नेक बनने के लिए इन चीजों को इख्तियार करना, कुछ चीजों को छोड़ देना, ये हलाल को हराम बनाना है। और देख लें फिर जिन्होंने ऐसा किया है ना, आज उनकी कहानियां देख लें। अभी पिछले दिनों भी एक कहानी आई भी थी कि बहुत पहले 30 साल पहले एक नन का कत्ल हुआ था, वो बेचारी नन बनने के लिए गई और उसका कत्ल किस वजह से हुआ कि उसने एक नन और एक पादरी को गलत काम करते हुए देख लिया था। तो आप ये देखें कि इनमें ये लोग कहते तो हैं हम शादी नहीं करते, मगर इनके अंदर खाते की आप कहानियां कभी सुने तो आपको पता चलेगा कि कितनी करप्शन है अंदर। वो जिना करने लगे हैं बजाय इसके कि वो निकाह ही कर लेते, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये एक नीड तो रखी है ना, एक जरूरत है उसकी, इसी से दुनिया का निजाम चल रहा है, इसी से नस्ल इंसानी आगे चलेगी। अब उसको हराम जगह पे निकाल रहे हैं, हलाल को उन्होंने हराम कर दिया इस वजह से, जो हराम का रास्ता रह गया फिर, क्योंकि हलाल रास्ता तो उन्होंने इख्तियार नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए अहकामात रखे ना उनमें इतनी खैर है, इतनी हमारा ही भला है, बजाय इंसान किसी गलत काम में पड़ जाए निकाह करो, रात को सो भी और इबादत भी करो, नफली रोजे भी रखो। ऐसे नहीं कि हमेशा ही रोजे से रहना, हमने कभी रोजा छोड़ना ही नहीं है, साल हा साल गुजर गए रोजे पे, सबसे प्यारा अल्लाह ताला को रोजा किसका था? दाऊद अलैहिस्सलाम का। एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन छोड़ते थे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की कितनी प्यारी सुन्नत, मंडे और थर्सडे का रोजा रखने की, अयाम भीत के रोजे रखने की। तो इस्लाम ये नहीं कहता हराम कर लो अपने ऊपर सारी चीजें। इसी तरह देखें अब बुखारी और मुस्लिम में है कि लोगों ने उम्महातुल मोमिनीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल की नस्बत सवाल किया, फिर बाज साहबा ने कहा हम कभी गोश्त नहीं खाएंगे, इसलिए कि गोश्त से जाहिर है गर्मी आती है इंसान के अंदर और फिर उसकी शहवत ज्यादा होती है। बाज ने कहा हम निकाह नहीं करेंगे, बाज ने कहा हम बिस्तरों पर ही नहीं सोएंगे। जैसे बाज लोग ना इस चीज को बड़ा नेकी समझते हैं, हम उनके घर गए वो तो बिस्तर ही नहीं उन्होंने रखे हुए थे, वो तो जमीन के ऊपर बैठे हुए थे, वो तो बस दुनिया की कोई उनको नहीं परवाह, बस कोई सामान नहीं उनके घर में, कोई कुछ नहीं। तो ये अगर वो ये समझ के कर रहे हैं कि इससे हम नेक होंगे और हलाल जरिया है भी, लेकिन वो नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हमने बस नेक इसी में होना है कि हमने आपको मुश्किल में डालें, सख्ती में डालें। हम मैट्रेस रखेंगे, कोई गद्दे बिस्तरे बिछाएंगे तो उससे हम शायद नेक नहीं होंगे, तो हम सख्त फर्श पे लेटेंगे। अगर नेकी समझ के ये कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई नेकी की बात नहीं। हाँ अगर ऐसी बात है कि हम ये सोचते हैं कि हम भाई नरम बिस्तरों पे सोते हैं तो उसकी वजह से हमारी आंख नहीं खुलती, हम एसी चला के सोते हैं तो उसकी वजह से सोए ही पड़े रहते हैं, फजर भी कजा हो जाती, अब मैंने नहीं एसी में सोना, वो एक अलग बात है, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं मैं एसी नहीं चलाऊंगी इसलिए क्योंकि अगर एसी होगा तो फिर मैं ज्यादा मतलब दुनिया की पता नहीं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई लग्जरीज में पड़ गई हूँ, मैं तैयुशात में पड़ गई हूँ, मैं गर्मी के अंदर रहूंगी, एसी है भी सामने, मेरे पास पैसे भी हैं उसको बिल देने के, लेकिन मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बस नेक बनना चाहती हूँ, नेक रहना चाहती हूँ, और मैं अपने आप पे जितनी सख्ती करूंगी ना अपने नफ्स पे उतना ही अच्छा। तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर जब उन्होंने ये कहा था ना सहाबा कराम में से बाज ने कि अब हम बिस्तर पे ही नहीं सोएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पता चला था तो आपने उनको भी यही कहा था जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि देखो मैं तो ये गोश्त भी खाता हूँ, मैं निकाह भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, नहीं भी रखता हूँ, फिर तू मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मेरा नहीं है, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस्लाम ना बैलेंस लेके चलने को आपको कहता है ना, तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाएं कि बस इतने ही खुले कि कोई हराम का भी एहसास नहीं कि ये चीज हराम है, हराम में मुंह मारते जा रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है, सोए हैं तो सोए ही पड़े रहते हैं, निकाह किया तो साथ और भी जिना के चक्कर लगे में और भी कई चीजें की हुई हैं और छुपी दोस्तियां रखी हुई हैं, इसी तरह अगर खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं, कोई उसकी लिमिट ही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये तदाल, ये तदाल क्या है। तो हदूद के अंदर रहना जरूरी है। तो इस्लाम याद रखें ये नहीं आपको कहता कि हलाल चीजों को आप छोड़ दें जबकि आप उनको हलाल तरीके से पा सकते हैं, ये नहीं आपको कह रहा कि आप हलाल चीज है तो चाहे किसी की चीज है वो उठा कर खा लो, क्योंकि मेरे देखे अल्लाह ने तो हलाल की भी, अब मैं चोरी करके खा लूंगी, नहीं, अगर नहीं आप ले खा सकते तो नहीं है, लेकिन वो चीज हलाल है अपने ऊपर खुद ना हराम करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो चीजें बनाई किसके लिए बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है, जो हलाल चीजें हैं वो तुम्हारे खाने पीने इस्तेमाल करने के लिए बनाई, तो तुम समझते हो नेकी और तकवा ये है कि मैं इनको हराम करूंगी तो मैं नेक बनूंगी, ठीक है, बात समझ है, आगे होगी उम्मीद है। तो हद से ना बढ़ो, ये भी हद से बढ़ना है, हम सोचते हैं हद से बढ़ना सिर्फ ये होता है कि हमने हराम को हलाल किया है, हलाल को हराम करने में भी हद से बढ़ जाना, ये भी हद से बढ़ जाना है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता, नहीं पसंद करता उनको किनको जो हद से बढ़ने वाले। अब किसी ने कहा जी मैं तो कुछ भी नहीं खाती, मैं कहीं पे भी चली जाऊँ मैं कुछ भी नहीं खाती, क्यों? इसलिए कि इस चीज का ये है, उस चीज का ये है, ये तो छना हुआ आटा है, ये तो फलां है, और ये तो आपसे वसलम ने कभी नहीं खाया था, तो उन्होंने इसलिए नहीं खाया था, उनको मुयस्सर ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपसे वसलम के सामने आके किसी ने कोई चीज दी हो तो आपने कहा कि मैं तो इतना नेक हूं मैं नहीं ये खाऊंगा, ऐसे नहीं था, कि अपने नेकी के इजहार के लिए उनको मुयस्सर ही नहीं थी, इस कदर फकरो फाका था। अब आपको मिल भी रही हो, हलाल रास्ते से भी मिल रहा हो, लेकिन हमने नहीं खानी बस, क्योंकि हम बस परहेज बहुत करते हैं। ऐसा जो परहेज नेकी को सोच के किया जाए ये सही नहीं, बल्कि खाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। कोई चीज पहने तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने मुझे ये दिया। वजन गर्मी में कोई लोग सोचते हैं कि मोटे कपड़े पहन के और इस तरह हो जिसमें इंसान बिलकता रहे वो पहन के रखेंगे तो ये हम कितने नेक हो गए। नहीं, अगर आपको ऐसे कपड़े मुयस्सर हैं जिसमें आपको गर्मी ना लगे, जो अच्छे हैं, थोड़ा कीमती है लेकिन आपको उसकी वजह से जिस्म को आपको आराम पहुंचता है, तो कोई उसके अंदर हरज नहीं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और भी रिवायत जो हमें पता चलती है वो ये है कि हजरत उस्मान बिन मजून जो थे, उस्मान बिन अफान नहीं है, उस्मान बिन मजून, उन्होंने अपनी बीवी से बिल्कुल ताल्लुक ही खत्म कर रखा था कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात से बिल्कुल अलग थे। तो एक दिन उनकी बीवी जो थी हजरत खौला, वो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के पास आई, वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अजवाज भी थी। तो उन्होंने जब देखा कि ये तो बिल्कुल ही बिखरी हुई हालत में है, बिल्कुल ही इनका कोई हार हुलिया ही नहीं है, ना कंघी की हुई है, ना कोई चोटी, ना कोई कपड़ों का कोई एहसास है, ना सफाई का, ना अपने आप को कोई श्रृंगार करने का, तो क्या बात है? हजरत खौला ने फरमाया कि मुझे क्या श्रृंगार की जरूरत है, इतनी मुद्दत गुजर चुकी है, मेरे शौहर ने तो मेरी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो आपने हजरत उस्मान को बुलाया, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि अल्लाह की इबादत हो और मैं बस बिल्कुल यानी कंसंट्रेशन के साथ फोकस करके अल्लाह की इबादत कर सकूं। मेरा इरादा है कि मैं तो बिल्कुल खसी हो जाऊं, कि तो औरतों के काबिल ही ना रहूं, ना मर्द हो जाऊं। तो आपने फरमाया मैं तुझे कसम देता हूं, जा अभी जा अपनी बीवी से मेल कर ले और उसे बातचीत कर। जवाब दिया रसूल, इस वक्त तो मैं रोजे से हूँ। यानी उनका इतना वो हाल था कि रोजे से एवरी डे और रखा हुआ रोजा और बीवी के पास भी नहीं जाना, रातों को इबादत हो रही। फरमाए रोजा तोड़ दो, और उन्होंने फिर ऐसा ही किया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों ये तुम्हारा क्या हाल है कि कोई बीवियां हराम कर रहा है, कोई खाना पीना छोड़ रहा है, कोई सोना छोड़ रहा है, तुम नहीं देखते कि मैं ये सब कुछ करता हूं। तो देखिए दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। जब कुछ लोग दीन की तरफ आते हैं तो वो इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जो लोग दीन से निकलते हैं वो दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चले जाते हैं। तो मोतदीन हर तरह के ही बुरे हैं, उनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह अकबर।